अंतिम।
बाबा हम सभी को 6 मास के लिए काम दे गए हैं। सुना बहनों ने कौन सा काम है? संपन्न बनने का और संपूर्ण बनने का और जीवन मुक्त होने का, श्रेष्ठ समय को समीप लाने का और मास्टर दाता बनकर सभी को देने का, लेने का नहीं, लेना एक से और देना सारे संसार को। तो बाबा ने हम सभी को बहुत बड़े बड़े लक्ष्य दे दिए हैं। समय भी निश्चित कर लिया, किसी लक्ष्य को निश्चित समय में पाना, इसके लिए मन में उमंग उत्साह हो। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, इंग्लिश में लोग कहा करते हैं, डू और डाई, करो या मरो। और बाबा ने कहा, क्या कहा है, जियो या मरो, करो। वही बाबा ने कहा, करना है चाहे कुछ भी करना पड़े। क्यों बाबा इतना जोर दे रहे हैं? समय थोड़ा है, लगता है ऐसा कि समय थोड़ा है, या लगता है कि कुछ चिन्ह दिखाई नहीं देते, पता नहीं कब तक संगम चले, क्या लगता है? तो हम सभी श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाली आत्माएं हैं। ये सत्य बात है, किसी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बाबा खुद उत्तर न देके कि समय कितना बाकी है हमें लगा देता है। ये सत्य बात है, हमारी संपूर्णता की समीपता ही समय को समीप लाएगी। हम संपूर्णता के समीप पहुंचे तो श्रेष्ठ समय समीप आ जाएगा। कौन सा है वो श्रेष्ठ समय? जिसको बाबा समीप लाना चाहते हैं, कौन सा है वो श्रेष्ठ समय? प्रत्यक्षता का, जिसके लिए बाबा ने बोला कि सारे संसार में आवाज हो जाए, आ गए हैं। उस दिन के लिए हम विचार करें, वो दिन कितना सुंदर होगा, जब वो मेले जो आज मंदिरों में लगते हैं आप सबके पास लगेंगे। सोचो, हर एक का घर एक चेतन मंदिर बन जाएगा। वो समय तो आना है ना, कल पाया है, और उस समय के हम सब समीप हैं। उसके बाद विनाश होगा। बाबा की मुरली में अभी 2-3 दिन पहले आया, जब तक तुम्हारे मन में युद्ध चलता है माया से, तब तक तुम कर्मातीत नहीं होंगे, और जब तक कर्मातीत नहीं हुए युद्ध नहीं लगेगा। एक युद्ध हमारे मन में चलने वाला और दूसरा युद्ध वो जिसके बाद और कोई युद्ध नहीं होगा। तो वो युद्ध तब होगा जब हम कर्मातीत के समीप होंगे, और कर्मातीत हम तब होंगे जब हमारे अंतर मन में चलने वाला युद्ध समाप्त हो जाए। युद्ध चलता है ना सबके मन में, बहुत बड़ा युद्ध है। अगर एक आत्मा अपने मन के इस युद्ध पर दृष्टि डाले तो उसे पता चलेगा कि एक ही दिन में कितना कितना युद्ध चलता है। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा, जीवन मुक्त हो जाओ। होना है जीवन मुक्त 6 मास में, कम से कम 75% तो होना है। क्योंकि जो 75% हो जाएंगे उन्हें संपूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। शुरू में मेहनत होती है किसी भी चीज में, 10% 20 30 40 50 60 तक बहुत मेहनत है, उसके बाद वो मार्ग सरल हो जाता है और हम जीवन मुक्त स्थिति की ओर सहज चल सकते हैं। तो हमारे मन का युद्ध समाप्त हो जाए, हम पहले जीवन मुक्त बने, फिर संपन्नता आएगी और बाद में संपूर्णता। ये शब्द बाबा प्रयोग करते हैं, कर्मातीत अवस्था, संपन्न, संपूर्णता, जीवन मुक्त, इन सब को हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना है। कर्मातीत अर्थात है, कर्मातीत अर्थात नहीं, कर्मातीत अर्थात सभी विकर्मों से मुक्त। जो पिछले विकर्म हैं वो भी खत्म हो जाएं और अब भी कोई विकर्म ना हो, सूक्ष्म भी, सभी विकर्मों से मुक्त स्थिति, कर्मातीत विकर्माजीत। पहले हम विकर्माजीत होते हैं, फिर ये कर्मातीत अवस्था आ जाती है, अर्थात हम आत्माएं खाली हो गए। जो उसमें गंदगी थी विकर्मों की और विकारों की, सब समाप्त हो गई, ये है कर्मातीत। साथ ही साथ चलती है हमारी संपन्नता। संपन्नता अर्थात हर चीज में फुल, हर बात में फुल, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, खुशी में, शांति में, पवित्रता में, वरदानों में, सब में फुल, ये है संपन्न। संपन्न होते होते हम संपूर्ण बन जाते हैं। तो इस तरह हमें जीवन मुक्त करना है स्वयं को। जीवन मुक्त अर्थात, बोलो, जीवन मुक्त की परिभाषा, जो हमें प्राप्त करना है वो हमारे सामने स्पष्ट हो, वो क्या स्थिति है। तो जीवन मुक्त अर्थात सभी जीवन के सभी बंधनों से मुक्त। ने भी एक परिभाषा दी है अपनी मुरली में, उसी में नहीं, इन सब का एक ही प्रभाव से मुक्त। चार पांच बातें बाबा ने सुनाई, विघन, परिस्थिति, साधन, मैं, मेरा, सभी के प्रभाव से मुक्त। और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रभाव से मुक्त स्थिति जीवन मुक्त है। बाबा ने जोड़ा सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति। सतयुग में क्योंकि कोई बंधन नहीं इसलिए वो प्रारब्ध है, संगम युग पर बंधनों से पार चलना और अपने को जीवन मुक्त करना, ये एक सुंदर साधना है। तो हमें प्रभावों से मुक्त स्थिति की ओर चलना है। सभी अपने को देखें, सवेरे से और शाम तक हमारे ऊपर कितनी चीजों का प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव है मनुष्य के ऊपर, और जरा जो बहुत प्रैक्टिकल सा है, बातों का प्रभाव, बातें, ठीक है ना। सवेरे से और रात तक कितनी बातें हैं, हर बात अच्छी और बुरी अपना प्रभाव छोड़कर जाती है, जाती है ना। देह का प्रभाव, देह की बीमारियों का प्रभाव, जो खाया पिया उस सब का प्रभाव, ठीक है। मोटी मोटी चीजें देखें, परिवार में आप रहते हैं, देखो ध्यान से किस किस चीज का प्रभाव है। सवेरे से उठने से ही काम काज का प्रभाव, जिम्मेदारियों के बोझ का प्रभाव, व्यक्तियों के स्वभाव संस्कारों का प्रभाव, उनके व्यवहार का प्रभाव, है ना। ये सब इसके आगे चलें, हमारे चारों ओर दूषित वातावरण है, उसका प्रभाव, कभी कभी दूसरे के संकल्पों का प्रभाव, अपने ही संस्कारों का प्रभाव, दूसरों के संस्कारों का प्रभाव, ये सब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। और अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है प्रकृति का प्रभाव, विनाश काल में जो कुछ होगा उस सब का प्रभाव। हमें इन प्रभावों से ऊपर उठना है, पहले उल्टे प्रभाव को समाप्त करना है, फिर जो चीजों का अच्छा प्रभाव हम पे पड़ता है हमें वास्तव में उससे भी ऊपर जाना है। जैसे कोई व्यक्ति हमारी निंदा करे, हम पर जो उसका प्रभाव होता है पहले हमें उससे पार चलना है, और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो हमें प्रशंसा, महिमा, मान सम्मान इन सब के प्रभाव से भी ऊपर निकल जाना होता है। किसी ने हमें अच्छे शब्द बोल दिए तो हम खुश हो गए, और निंदा कर दी तो खुशी उदासी में बदल गई। इन सब से ऊपर निकल जाना है। अब हमें सोचना है कि आने वाले समय में रोज हम क्या करें। पहली बात तो ये, क्या सभी को ये याद रहता है कि जीवन मुक्त होना है, यह वैसा ही है जैसा पहले था? मुरली सुनकर हमने अपने अंदर कुछ परिवर्तन किया है? सभी को पूछना है अपने से। बाबा फिर दोबारा आ रहे हैं हमारे सामने, हो सकता है बाबा एक दूसरा काम दे दे हमें, या इसी से जुड़ा हुआ काम दे दे, या हमसे पूछ ले कि मैं जो काम देकर गया था क्या हुआ अब तक। क्योंकि रोज हमें साधनाओं का बल स्वयं में भरना है। जीवन मुक्त स्थिति छोटी सी स्थिति नहीं है जो जंप लगाकर प्राप्त कर ली जाए, बहुत लंबी साधनाओं की जरूरत है इसके लिए कि हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव न पड़े। हम सब जानते हैं, अनुभवी हैं, मान अपमान और हार जीत में समान रहना कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। कौन रह सकेंगे समान? अब इसके पीछे एक रहस्य है। तो हमारी मन की स्थिति पर कोई भी प्रभाव न पड़े, क्या चाहिए उसके लिए, क्या स्थिति में चाहिए, और क्या क्या हम अभ्यास करें? किसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता? देखो, आप चारों ओर देखो, अपने आसपास किसके ऊपर दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ता? एक माँ को उसके बच्चे, छोटे बच्चे तंग करते रहें, चंचलता करते रहें, माँ को क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? बताओ माताएं, हाँ? प्यार है बच्चों से, और अपने हैं वो, और हाँ? समाने की शक्ति है माँ के अंदर, और बच्चे हैं वो। बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए माताओं ने। एक ये बात है कि जब हमारे अंदर दूसरों के लिए निस्वार्थ प्यार पैदा हो जाता है तब बहुत चीजों का प्रभाव खत्म हो जाता है। हमारे मन में किसी के लिए घृणा और ईर्ष्या हो तो दूसरे का प्रभाव बहुत रहेगा ना, और स्नेह हो तो बहुत कम रहेगा। अगर हम दूसरों को अबोध बच्चे समझ लें, बालक, तो बालकों की कोई भी बात सीरियस नहीं ली जाती है, हल्की ली जाती है, तो बहुत चीजें हल्की हो जाएंगी। तो एक ये बात है। अब हम विचार करेंगे एक पॉइंट को सामने रखते हुए, बातों के प्रभाव से कैसे हम मुक्त रहें। बातें अर्थात दूसरों का व्यवहार, गलत शब्द, अपमान, निंदा, इन सब से हम मुक्त हो जाएं, ये सब चीजें हमें परेशान न करें, हमारी स्थिति को डिस्टर्ब न कर दें, हमारी खुशी को गुम न कर दें, हम क्या करेंगे? जो आत्मा फुल है, बाबा के शब्द हैं ये, जो फुल हैं उन्हें फील नहीं होता, याद है? फीलिंग उन्हें आती है जो खाली हैं। अगर आप अपने मन की भटकन पर ध्यान दें, मन कहां भटकता है, वो कहां जाता है, तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो मन अतृप्त है, खाली है, जिसमें भरपूर आनंद नहीं है, वो इन सब की खोज में इधर उधर जाता है, तृप्ति के लिए इधर उधर जाता है मन। अगर हम उसको तृप्त करना जान जाएं, तो मन का भटकना बंद हो जाए। अभी अभी एक अव्यक्त मुरली हम सब ने सुनी है, दो दिन पहले ही बीज रूप पर जो यहाँ थे उन्होंने सुनी होगी। पहला ही एक बहुत सुंदर महावाक्य है उसका, जिसका हमें अभ्यास कर लेना चाहिए, कि तुम्हारा जो विस्तार का वृक्ष है, शाखाएं हैं, बहुत विस्तार है ना, मन से निकला हुआ व्यर्थ का विस्तार है, उस विस्तार के वृक्ष को बीज रूप आत्मा में समा लो। अगर बीज रूप होना है तो सारे ही विस्तार को समा लो अपने अंदर, बीज में, क्योंकि बीज से ही विस्तार हुआ है और वृक्ष के अंत में, फल में फिर बीज होता है। बीज से विस्तार, विस्तार से फिर बीज। हम अपने मन के विस्तार को समा लेना सीखें, और हमें ये भी सीखना होगा कि हम विस्तार न करें। विस्तार होने वाली चीजें बहुत हैं संसार में, हर एक के पास हैं। जिसको कुछ काम नहीं है उसके भी मन का विस्तार बहुत है, जिसको कोई कमी नहीं है, धन धान से भरपूर हैं, उनके मन का विस्तार और ज्यादा है। हमें इस विस्तार को कम रखने की कला भी सीखनी है, ये जरूरी कला है। अगर हम विस्तार करते गए, उसको समेटना सहज नहीं होता। विस्तार कर लेना सहज है, समेटना सहज नहीं। आप पीस पार्क में जाएंगे, वहां एक बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ेंगे, अगर आपका ध्यान जाए उस स्लोगन पर, बहुत काम का स्लोगन है हमारे, वहां लिखा है कि जिस स्थिति को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, उसे बिगड़ने में कितनी देर लगती है? एक सेकंड। बनी होगी 20 साल में और बिगड़ जाएगी एक सेकंड में। तो लिखा है कि ऐसी कमाई जो लंबे समय में की है, उसको एक सेकंड में बिगाड़ कर नष्ट न करो। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम सभी को अपनी श्रेष्ठ स्थिति के महत्व को समझना चाहिए। हमारा मन अगर स्थिर है, मन अगर शांत है, मन में अगर कोई उलझन नहीं है, मन अगर खुशी में और अतीन्द्रिय सुख में है, तो यही सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। ऐसी आत्मा को ही जन्म जन्म महान भाग्य प्राप्त होगा। और जिसके मन में उलझन है, जिसकी स्थिति बार बार बिगड़ती है, जिसके संकल्पों में शक्ति नहीं है, उनका भाग्य बहुत ढीला होगा। तो हम स्वयं अपनी स्थिति को महत्व दें, समझते हैं ना सभी। जो आत्मा अपनी स्थिति को महत्व देंगे वो छोटी छोटी बातों में स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों में स्थिति बिगाड़ लेना बहुत छोटी बात पर, समझो एक दो पैसे की बात पर करोड़ों की स्थिति बिगाड़ लेना, पद्मों की स्थिति बिगाड़ लेना, ये बुद्धिमानी नहीं। बातें हमारे पास कैसी होती हैं, बहुत छोटी छोटी, जिनकी कोई कीमत नहीं, दो एक पैसे की, उनके पीछे हम अपनी मूल्यवान स्थिति को बिगाड़े नहीं। तो हम सभी को एक बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है और हमारे मन में बाबा की सुवास को पूरी करने की उमंग होनी चाहिए। जब सुप्रीम टीचर स्वयं कहे कि कुछ भी करो मरो, सहन करो त्याग करो, पर पहुंचना है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जो कुछ कह रहा है वो हमारे कल्याण के लिए कह रहा है ना, उसमें उसका कुछ नहीं है। वो ये भी कह सकता है, जैसे आजकल के टीचर कहते हैं ना, बच्चे पढ़े या न पढ़े हमें तो सैलरी मिलती है ना, तनख्वाह, क्या लेना देना, इस टेंशन में क्यों जाना। शिव बाबा भी कह सकता है, तुम पढ़ो न पढ़ो मुझे क्या, मैं तो पढ़ा दिया सब कुछ। पर वो ये नहीं कहता, क्योंकि वो एक ही साथ पिता भी है, सदगुरु भी है, हमारा सच्चा मित्र भी है, केवल टीचर नहीं है, सब कुछ एक साथ है। इसलिए वो शिक्षाएं देकर हमें छोड़ नहीं देता, पालना करता है पूरी। बार बार कहता है, हम भूल जाते हैं, फिर कहता है, जानते हुए कि ये भूल गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर कहता है फिर करो। तो एक ही साथ अनेक रूपों से हमारी पालना करता है बाबा, तो हमें भी एकांत में बैठकर अपने से बात अवश्य करनी चाहिए कि भगवान हम पर इतनी मेहनत कर रहा हो, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ आए हैं शांति वन में सेवा के लिए, तो सेवा के साथ स्वयं की उन्नति का, आत्मविश्लेषण का, सेल्फ एनालिसिस का एक सुंदर माहौल यहाँ है, उसका सभी फायदा उठाएं कि हम अपने जीवन में और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या संभव है अपने गृहस्थ में रहते हुए हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना लें। जिस स्थिति और परिस्थिति में आप हैं, घर में आप अकेले ज्ञान में चलते हैं, दूसरे लोग विरोध करते हैं, आप ज्ञान में चलते हैं, दूसरे आपको जरा भी सहयोग नहीं देते हैं, ऐसे में क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है? दूसरे के विरोध को स्वयं को शक्तिशाली बनाने के काम लिया जा सकता है। जितना वो विरोध करें हम उतना ही शक्तिशाली बने, जितना लोग बुरा बोलें हम उतने ही अडोल बने, ये सब किया जा सकता है। क्या जरूरी है इसके लिए? एक चीज जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है, छोटी सी साधना है, कि हम मनुष्यों के शब्दों पर बहुत ध्यान देते हैं, इसने मुझे ये कहा, बहुत ध्यान देते हैं, दिल के अंदर बैठा देते हैं उसको। बाबा ने क्या कहा उस पर अगर ध्यान देंगे तो मनुष्यों के द्वारा बोले गए शब्दों का प्रभाव हल्का हो जाएगा। कोई हमारी निंदा कर रहा है, किसी ने सबके बीच हमारे लिए गलत शब्द बोले हैं, बस आत्मा सोचने लगती है, देखा मेरा कैरियर खराब कर दिया इसने, लोग क्या कहेंगे ये सब मुझे, कि ये है ही ऐसे, उन्हें क्या पता कि ये इस व्यक्ति को बोलने की आदत है, हमें बदनाम कर दिया, हमने जो आज तक मेहनत की थी सब गई, और सोच सोच के अपनी स्थिति को बिगाड़ देते हैं। सोचना चाहिए, बाबा ने इस परिस्थिति के लिए मुझे क्या कहा है। कहा है ना, ज्ञानी तू आत्मा वो जो मान अपमान में समान रहे। तो बाबा के ये शब्द अगर गूंजने लगे कानों में तो मनुष्यों के शब्द फीके पड़ जाएंगे। पर ये तब होगा जब हमें बातों में रस न हो। ज्ञान और योग के मार्ग पर जिसे बातों में बहुत रस है उन्हें ईश्वरीय रस प्राप्त नहीं होता। इसलिए बातों से ऊपर उठना है। बातों के प्रभाव की बात तो पीछे, पहले बातों से अपने को निकालना है। अपने से पूछना है बातें चाहिए या बाबा का मिलन क्या चाहिए। अपने से पूछेंगे, गहराई से पूछेंगे, अंतर मन से पूछेंगे बातें चाहिए या ईश्वरीय सुख चाहिए, क्या चाहिए हमें। बातें तो हम युगों युगों से करते आए हैं, उलझते आए हैं। अब बातों के रस को निकाल देना चाहिए, तब ज्ञान का रस प्राप्त होगा, ईश्वरीय रस प्राप्त होगा। जिनको बातों का रस है उन्हें ज्ञान का रस भी प्राप्त नहीं होता। ज्ञान में भी बहुत रस है, सुख है, शक्ति भी है, परंतु है तब जब बुद्धि स्थिर हो। तो सभी फिर विचार करें कि हमारे सामने बहुत बातें सवेरे से शाम तक आती हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, और अगर पड़ गया हो तो जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। तो चार बातें हम आपके सामने रखते हैं, नई कुछ नहीं, सबने सुनी हैं, इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। पहली चीज, बाबा ने इस अव्यक्त मुरली में भी कहा जो दो दिन पहले हमने सुनी, अशरीरीपन का गहन अभ्यास। आत्मा महसूस करे कि मैं इस शरीर से न्यारी। सभी अभ्यास करें, मैं आत्मा इस तन में आई हूं। दूसरा अभ्यास भी करेंगे बाबा की इसी मुरली के आधार से, कि जो ऐसी आत्माएं हैं बीज रूप के अनुभव में रहने वाली, तीनों लोकों में जाना उन्हें ऐसा लगेगा जैसे एक कमरे से निकल दूसरे में जाना। तो कभी मैं आत्मा इस देह में हूं, कभी सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ हूं, और कभी परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ रह सके हम, वहां आराम कर सके कुछ देर वहां। ये नहीं एक सेकंड गए और वापस आ गए। स्थिर हो जाए हमारी स्थिति, इससे बहुत चीजों का प्रभाव स्वतः ही खत्म हो जाएगा। एक बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य है, बहुत पुराना, 77 में हमने वो महावाक्य सुना है किसी पर्सनल मुलाकात में, कि जो आत्माएं आवाज से परे रहती हैं उन्हें इस संसार की कोई भी आवाज प्रभावित नहीं करती। बहुत सुंदर महावाक्य है, जो आवाज से परे रहेंगे संसार की आवाज उनके अंदर नहीं जाएगी, और जो संसार की आवाज में रस लेंगे वो आवाज से परे नहीं जा सकेंगे। तो ये अभ्यास बाबा के आने तक रोज 10 बार कम से कम सभी करें। दिन में कर्म करते हुए जो भी सेवा जिसको है, मैं आत्मा इस तन में आई हूं, अवतार हूं, प्रवेश किया है मैंने इस तन में, इस फीलिंग में चले जाएंगे तो दिखाई देगा कि समय भी तेजी से पास होता है, और जो कुछ हो रहा है उसकी भी हमें अविद्या हो जाती है, उसका प्रभाव नहीं रहता। दूसरा चाहिए हमें ज्ञान का श्रेष्ठ बल जो हमें प्रभाव मुक्त रखेगा। जितने ज्ञान के शक्तिशाली पॉइंट जिस आत्मा के पास हैं, आत्मा उतनी अडोल रहेगी। समय पर पॉइंट्स याद आए ये बहुत आवश्यक है, और समय पर उनको याद आते हैं किन्हें बताएंगे कोई अनुभव अपना? समय पर ज्ञान की यथार्थ पॉइंट्स उन्हें याद रहती हैं जो बाबा के काम आते हैं समय पर, ये भी बात ठीक है। जिन्होंने मुरली सुनते हुए विशेष अपनी बुद्धि को स्थिर रखा है, तो स्थिर बुद्धि में समा गई हैं वो बातें, और हमारी बुद्धि ये बहुत सुंदर कंप्यूटर है जो स्वतः ही समय पर उन चीजों को इमर्ज करा देती है। ज्ञान, परिस्थिति हमारे सामने आ गई, कोई विघन आ गया है, उस समय हमें क्या याद रहे जिसके बल से विघ्नों का प्रभाव हमारे ऊपर न रहे। विघ्न और परिस्थितियां संसार में दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, और हमें उनके प्रभाव से मुक्त रहना है। हमारे चारों ओर का वातावरण दिनों दिन और दूषित होता जाएगा। हमें न केवल उसके प्रभाव से मुक्त रहना है, लेकिन उसको प्रभावित भी करना है, वातावरण को बदलना है हमें। तो ज्ञान की शक्तिशाली बातें हमारी बुद्धि में घूमती रहें। इसलिए ये भी आवश्यक है कि ज्ञान की ऐसी बातों को हम अपने हाथ से लिखा करें। जिनको याद नहीं रहती पॉइंट, वो ये एक छोटी सी विधि अपना सकते हैं कि जो बात आपको बहुत अच्छी लगे ना, उसको 10 बार लिखो। लिखने से हमारी मेमोरी में वो छप जाती है और याद रहने लगेगी। थोड़ा अध्ययन भी करें, ज्ञान मिला है हमें इतना सुंदर अमृत, सर्वश्रेष्ठ खजाना, उसका अध्ययन करना चाहिए या नहीं? लौकिक पढ़ाई देखो, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल करनी पड़ती है ना, थोड़ी सी कमाई के लिए, और जिससे आत्मा जन्म जन्म के लिए भरपूर होती हो, उस पढ़ाई में हमें अवश्य रस लेना चाहिए, समय देना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, लिखना भी चाहिए। तीसरी चीज जो हमें सभी बातों के प्रभाव से मुक्त रखेगी वो है स्वमान की शक्ति। स्वमान को सब जानते ही हैं, मैं कौन, जितना जिसको नशा चढ़ा रहे, नशा, मैं कौन। बाबा ने इस अव्यक्त मुरली में भी हमारे लिए 5 टाइटल दिए, याद है ना? होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट। भगवान भी जब हमें देखता है तो ऐसी नजर से देखता है कि संसार की चुनी हुई परम पवित्र आत्माएं बैठी हैं, संसार से ढूंढ ढूंढ कर निकाली हुई महान आत्माओं का संगठन है, जो संसार में सबसे मीठे हैं, कड़वे नहीं, वो सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जिनके भाग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। चारों युगों में जिनको लोग भाग्य विधाता कहते आए, वो सब यहां बैठे हैं। तो ऐसी ऐसी महान स्वमान की बातें जिसकी बुद्धि में रहेंगी और इसका नशा चढ़ा रहेगा, सब जानते हैं जहां नशा चढ़ा हो वहां कोई बात सुनती भी नहीं है। नहीं सुनती तो कहते हैं ना, नशे में हो क्या, कहते हैं ना लोग, किस नशे में हो, सुन ही नहीं रहे कुछ। और जिनको असली नशा चढ़ा हुआ हो उनको तो कुछ भी सुनेगा नहीं, किसने अपमान कर दिया उन्हें पता ही नहीं चलेगा, उन्हें तो नशा चढ़ा हुआ है। जिन्हें भगवान सम्मान दे रहा हो उनका भला कोई क्या अपमान कर सकता है। दे रहा है ना भगवान स्वयं सम्मान ये कह के कि तुम महान आत्माएं हो इस संसार की। कितना बड़ा सम्मान देता है हमें वो जो सबसे महान है। वो कहता है तुम मेरे से भी महान हो, इससे बड़ा सम्मान कोई मनुष्य क्या दे सकता है। तो अपमान के शब्द ऐसे स्वमान में रहने वाली आत्माओं को टच नहीं कर सकते। तो जब तक आप इन तीन दिनों में विशेष रूप से इन पांच बातों में से कोई भी एक आप चुन लें और उस नशे में चलें सारे दिन में कई बार 10-20 बार, हम हाईएस्ट आत्माएं सबसे महान या परम पवित्र जिनकी पवित्रता से जड़ और चेतन, आकाश और पाताल, सागर और सारा वायुमंडल सब पावन हो जाते हैं, प्रकृति पावन हो जाती है। ऐसी महान आत्माएं हैं हम, ऐसे स्वमान में रहेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे यहीं, और बाबा जब हमसे मिलने आएंगे तो बहुत सुखद अनुभूति होगी। आप सभी यहाँ सेवा करने भी आए हैं और बाबा से मिलने भी, तो बाबा का मिलन भी बहुत सुंदर अनुभव कराए। इसके लिए आवश्यक है कि हम भी बहुत अच्छी स्थिति में स्थित हो जाएं, चाहे हम बाबा के महावाक्यों के रहस्य को समझना चाहते हों, चाहे हमारा बाबा से मिलन बड़ा सुखदाई हो। दोनों के लिए ये आवश्यक है कि हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो। जितनी स्थिति की समानता होगी बाबा से, उतना ही बाबा के द्वारा बोले गए महावाक्य उतनी ही गहराई से आत्मा समझेगी जितनी गहराई उनमें है। इस तरह हम सभी को अभ्यास करना है जीवन मुक्त होने का, बातों का प्रभाव कम से कम रहे, साधनों का प्रभाव कम से कम रहे। साधन जो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे, जिसके पास साधन नहीं है वो ये सोच के निराश न हो कि हमारे पास नहीं है, पैसे होते तो हम भी ये चीजें घर में रख लेते, ये भी साधनों का प्रभाव है। जिनके पास साधन है वो क्या समझें कि साधन केवल उपयोग करने के लिए हैं, श्यान के लिए नहीं। श्यान समझते हैं ना, ठाट बाट दिखावा। जो साधनों को इन सब के लिए समझ लेते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। साधनों के अधीन भी हमें नहीं होना है। मुझे बाबा की वो बात बहुत याद रहती है, बाबा ने अभी कहा कुछ 2-3 मास पहले कि विनाश काल में सबसे ज्यादा दुख पाएंगे अमेरिका के लोग। क्यों? साधनों के अधीन है। बिजली अगर चली जाए 1-2-3 दिन के लिए तो मर गए सब, ऐसा लगेगा मर गए जिंदे भी। साधनों की अधीनता है। पेट्रोल डीजल बंद हो जाए तो लगेगा जीवन ही नहीं रहा, कुछ काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर सारे काम करना छोड़ दें तो सब धंधे बेकार। ये है साधनों की अधीनता। तो मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर जब साधनों की शक्ति को अपने से ज्यादा बड़ा समझ लेता है तो उनकी अधीनता हो जाती है। हम सभी को तो किसी भी चीज की अधीनता न हो, ठीक है ना? सोचना है सभी को, सबके पास साधन हैं, छोटे बड़े, हम उन्हें यूज करें। वो यूज करने के लिए हैं, आज हैं यूज कर रहे हैं, कल नहीं होंगे तो नहीं, खत्म। हम तो हैं, जिन्होंने क्रिएट किए साधन वो तो हैं। वो अगर एक तरह से साधनों को यूज करके सुख नहीं ले रहे तो दूसरी तरह से ले सकते हैं। और वास्तविक सुख और आनंद कहाँ है? हमारी श्रेष्ठ स्थिति में। ये बात हमें भूलनी नहीं है। सुख, शांति, आनंद, खुशी साधनों में नहीं, श्रेष्ठ स्थिति में है। वो धन में भी नहीं, वो पद पोजीशन में भी नहीं है, वो केवल अपने अंदर है। आत्मा आत्मा में ही आनंदित हो सकती है, आत्मा से बाहर निकल कर नहीं। तो सभी 3 दिनों में अच्छी साधना करेंगे, सभी बातों से मुक्त रहते हुए स्वमान का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास और योग अभ्यास में 3 लोकों में जाने का अभ्यास, बाबा से शक्तियां लेना। इस तरह 3 दिन की साधना, हमें 4th दिन बाबा से मिलन जब होगा तो भरपूर होने का अनुभव कराएगी। ओम शांति।